लाउडेटर यीशुस क्रिस्टस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अत्याचार और उत्पीड़न निवारण के लिए प्रार्थना करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यातनाओं के उन्मूलन को सुनिश्चित करने हेतु ठोस रूप से प्रतिबद्ध रहे और पीड़ितों एवं उनके परिवारों को सहायता की गारंटी प्रदान करे। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं जूलियट क्रिस्टोफर
और फादर संजय दिलीप एक्का।
पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल धर्मग्रंथ के प्राचीन व्यवस्थान में निहित सूक्ति ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। घड़िया चांदी की और भट्टी सोने की परख करती है, किंतु प्रभु हृदय की परख करता है। कुकर्मी बुरी बातें ध्यान से सुनता और झूठ बोलने वाला व्यक्ति चुगली पर कान देता है। जो कंगाल का उपहास करता वह उसके सृष्टिकर्ता का अपमान करता है। जो दूसरों की विपत्ति पर प्रसन्न होता है उसे निश्चय ही दंड मिलेगा। नाती पोते बूढ़ों के मुकुट हैं और पिता पुत्रों की शोभा। श्रोताओ, ये थे सूक्ति ग्रंथ के 17वें अध्याय के 3 से लेकर 6 तक के पद। विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत हमने इन्हीं पदों की व्याख्या की थी। इस तथ्य के प्रति हमने श्रोताओं का ध्यान आकर्षित कराया था कि मानव हृदय न केवल ईश्वर की दृष्टि के अधीन है बल्कि ईश्वरीय न्याय के भी अधीन है। जैसे चांदी को परखने के लिए घड़िया होता और सोने की परख आग में होती है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर मानव हृदय को परखते हैं ताकि उसे शुद्ध कर सकें। उक्त पदों में कुकर्मों में लगे लोगों के विरुद्ध भी चेतावनी दी गई है। जो बुरी बातों पर ध्यान देते हैं वे झूठ और चुगली का समर्थन करते हैं। अन्यों की बुराई सुनने में वे मजा लेते हैं। ऐसे ही लोग कंगाल का उपहास करते, वे सृष्टिकर्ता का अपमान करते और दूसरों की विपत्ति पर खुश होते हैं। श्रोताओ, वे लोग जो गरीबों को रौंदते, उनकी जरूरतों और उनकी गरीबी का मजाक उड़ाते, उनकी कमजोरियों का लाभ उठाते, उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश में लगे रहते, वे वास्तव में महापाप के दोषी हैं। लेखक चेतावनी देता है कि इस तरह जो अपने सृष्टिकर्ता और सृजनहार की निंदा करते हैं वे जान लें कि उन्हें अपने कर्मों का लेखा देना होगा। वस्तुतः श्रोताओं, वह जो अन्यों की विपत्तियों पर प्रसन्न होता, वह जो दूसरों के खंडहरों पर अपने घर निर्माण की मंशा रखता और खुद न्याय कर अपने फैसले पर प्रसन्न होता है, वह प्रभु ईश्वर के सामने टिक नहीं पाएगा। आगे सूक्ति ग्रंथ का लेखक कहता है, नाती पोते बूढ़ों के मुकुट हैं और पिता पुत्रों की शोभा। श्रोताओ, यदि नाती पोते वयस्कों के द्वारा सिखाए गए अच्छे मूल्यों को आत्मसात कर अपना जीवन बिताते हैं तो वे अपने वयोवृद्धों के मुकुट बनते हैं। वे उसी प्रकार विकसित होते हैं जैसे उन्हें परिवार में सिखाया गया है। वे अपने अच्छे आचरण द्वारा परिवार का सिर ऊंचा उठाते और माता पिता की शोभा बनते हैं। मनुष्य के लिए यह सम्मान और गौरव की बात है कि जब तक वह जीवित रहे वह अपने बच्चों को देख सके, उनका घर बसते हुए देख सके और यह देख सके कि वे उनके द्वारा सिखाए गए ईश नियमों के अनुसार अपनी पीढ़ी की सेवा कर रहे हैं। ऐसे ही नाती पोते अपने वयोवृद्धों का ताज बनते और ऐसे ही पुत्र अपने पिता की शोभा बनते हैं।
हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई, हे ईश्वर तेरी दया स्वर्ग तक छाई।
आगे सूक्ति ग्रंथ के 17वें अध्याय के 7 से लेकर 10 तक के पदों में लेखक कहता है, मूर्ख के मुख से अलंकृत भाषा शोभा नहीं देती, किंतु सम्मानित व्यक्ति का झूठ कहीं अधिक अशोभनीय है। रिश्वत देने वाला समझता है कि घूस जादू का पत्थर है, वह जहां भी जाता है सफलता प्राप्त करता है। अपराध क्षमा करने वाला मित्र बना लेता है, जबकि चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। श्रोताओ, यहां लेखक ने इस बात की ओर ध्यान आकर्षित कराया है कि मूर्ख के मुख से अलंकृत भाषा शोभा नहीं देती है, तथापि सम्मानित व्यक्ति का झूठ उससे और अधिक अशोभनीय होता है। मूर्ख अलंकृत भाषा बोलने का ढोंग रचते हैं, जबकि उसके अर्थ का उन्हें कोई अता पता नहीं होता, किंतु यदि सम्मानित व्यक्ति झूठ बोलने लगे तो वह और भी अधिक अशोभनीय है। राजा सुलेमान के नीति वचनों में एक दुष्ट और विधर्मी व्यक्ति को मूर्ख बताया गया है। ऐसा व्यक्ति उत्कृष्ट भाषण देने के योग्य नहीं होता, क्योंकि उसकी बातचीत, उसके मन में भरा कपट उसके उत्कृष्ट भाषण को झुटला देती है। वस्तुतः जो व्यक्ति खुद शिक्षा से बैर रखते हैं, उनका ईश्वर की विधियों से क्या वास्ता। जैसा कि स्तोत्र ग्रंथ के 50वें अध्याय के 16वें पद में लिखा है, ईश्वर विधर्मी से कहता है, तुम मेरी संहिता का तिरस्कार करते और मेरी बातों पर ध्यान नहीं देते हो, तो तुम मेरी आज्ञाओं का पाठ और मेरे विधान की चर्चा क्यों करते हो। इसी प्रकार यीशु मसीह अशुद्ध आत्माओं को यह कहने की अनुमति नहीं देते कि वे उन्हें ईश पुत्र के रूप में जाने। प्रेरित चरित ग्रंथ के 16वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि अबदूत के वश में गिरफ्त एक महिला प्रेरितवर पौलुस के पीछे पीछे चलकर चिल्लाती थी कि वे सर्वोच्च ईश्वर के सेवक थे और लोगों को मुक्ति का मार्ग दिखाते थे, किंतु पौलुस ने तंग आकर उस अबदूत ग्रस्त आत्मा से कहा, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम पर इस महिला से निकल जाने का आदेश देता हूं, और वह उसी क्षण उससे निकल गया। तदोपरांत उक्त पदों में रिश्वतखोरों की ओर ध्यान आकर्षित कराया गया है। श्रोताओ, जिनके हाथ में पैसा है वे सोचते हैं कि वो इससे सब कुछ कर सकते हैं। जिनके पास भौतिक धन होता है वे पैसे को कीमती पत्थर की तरह महत्व देते हैं और खुद को इस तरह महत्व देते हैं मानो वह उनका आभूषण हो, मानो उसी से उन्हें शक्ति मिलती है। वे इस भ्रम में पड़े रहते हैं कि घूस देकर और रिश्वत लेकर वे कुछ भी कर सकते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वे जो कुछ करते हैं उसका दुष्प्रभाव उन्हीं पर पड़ता है। वे न्याय को अपने अनुरूप बनाने की कोशिश करते हैं, किंतु इस रास्ते पर उनका भटक जाना सुनिश्चित है। 9वें और 10वें पदों में लेखक कहता है, अपराध क्षमा करने वाला मित्र बना लेता है, किंतु चुगलखोर मित्रों में फूट डालता है। मूर्ख पर लाठी के 100 प्रहारों की अपेक्षा समझदार पर एक फटकार अधिक प्रभाव डालती है। श्रोताओ, संबंधियों और पड़ोसियों के बीच शांति बनाए रखने का तरीका यह है कि हर चीज का सर्वोत्तम उपयोग किया जाए, और यदि अन्यों की सुरक्षा के लिए कोई बात बिल्कुल जरूरी नहीं है तो उस बात को उन्हें न ही बताया जाए तो उचित होगा। उन बातों पर ध्यान देना कि अन्यों के खिलाफ क्या कहा गया है, अन्यों के खिलाफ क्या किया गया है, तथा उनके बारे में चुगली करना मित्रों में फूट डालना होता है, जबकि किसी गलती के लिए क्षमा मांग लेना अच्छे निर्माण की पहली ईंट हो सकती है। मित्रों के बिछड़ने और उनमें मतभेद पैदा करने से बढ़कर और कुछ नहीं है। न चाहकर भी मन में कड़ुआहट पैदा हो जाती है और जुनून उत्तेजित हो जाता है, जबकि शांति का सर्वोत्तम तरीका क्षमा या विस्मरण का कार्य है। फिर लेखक कहता है कि मूर्ख पर लाठी के 100 प्रहारों की अपेक्षा समझदार पर एक फटकार अधिक प्रभाव डालती है। श्रोताओ, मूर्ख की ढेर सारी बातों का कोई अर्थ नहीं होता, जबकि समझदार का एक ही शब्द व्यक्ति के मनो को प्रभावित करने में सक्षम होता है। वस्तुतः धूर्त और हठधर्मी व्यक्ति अंत में असफल ही रहता है, जैसा कि मिस्र के फराउन पर उसकी कठोरता के कारण विपत्तियां आई थीं। दूसरी ओर समझदार की कोमल डांट न केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति के सिर में प्रवेश करेगी, बल्कि दिल में भी। समझदार की बात किसी पर भी सकारात्मक प्रभाव डालने में सक्षम बनेगी।
हे ईश्वर, तेरी दया स्वर्ग तक छाई। हे ईश्वर, तेरी दया स्वर्ग तक छाई। है तेरी निष्ठा मेघों पर लहराई। हे ईश्वर, तेरी दया स्वर्ग तक छाई। पावन गिरिसा न्याय अटल है तेरा। पावन गिरिसा न्याय अटल है तेरा। गहरे सागर सा निर्णय है तेरा। गहरे सागर सा निर्णय है तेरा। प्रभु मनुज और पशुओं का है त्राता। हे ईश्वर, तेरा प्रेम अमोल सुहाता। हे ईश्वर, तेरी दया स्वर्ग तक छाई। है तेरी निष्ठा मेघों।
आप वैटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं और अब लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने अफ्रीका के सघन शिक्षण प्रवर्तकों के एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल से भेंट करते हुए उनके कार्यों की प्रशंसा की। संत पापा फ्रांसिस ने प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करते हुए कहा, हम अफ्रीका को बड़े विश्वास के साथ देखते हैं। उन्होंने अफ्रीका के कहावत को उद्धृत करते हुए कहा, एक बच्चे को शिक्षित करना पूरे कस्बे का दायित्व है। यह शिक्षा के उस सामुदायिक आयाम को व्यक्त करता है जो हमेशा आपके सह शताब्दियों की शैक्षणिक परंपरा का हिस्सा रहा है। उन्होंने कहा कि यह गांव के सभी सदस्यों द्वारा एक शैक्षणिक गठबंधन को दिखलाता है, जिसके तहत एक बच्चे की शिक्षा दीक्षा का उत्तरदायित्व उसके माता पिता की अनन्य जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि यह समुदाय के सभी लोगों की है। हर किसी का इसलिए कर्तव्य है कि वे शिक्षा का समर्थन करें जो हमेशा एक संयुक्त प्रयास है। संत पापा ने कहा, शिक्षा में हमें अधिक जोखिम उठाना होगा और एक दल के रूप में कार्य करना होगा। अफ्रीकी शिक्षा सघन न केवल रिश्तों के साम्यवादी और क्षैतिजिक आयाम को मजबूत करना है, बल्कि यह ईश्वर के साथ संबंध को भी अपने में सशक्त बनाना है। उन्होंने कहा, हम अफ्रीका को बड़े विश्वास के साथ देखते हैं क्योंकि इसमें वह सब कुछ है जो भविष्य में महाद्वीप बनने हेतु नक्शा तैयार करने में सक्षम है। मैं न केवल महान खनिज संसाधनों और आर्थिक प्रगति और शांति प्रक्रियाओं की ओर ध्यान आकर्षित करा रहा हूं, बल्कि मैं सभी शैक्षणिक संसाधनों के बारे सोच रहा हूं। पारंपरिक अफ्रीकी शिक्षा के मूल्य, विशेष रूप से आतिथ्य, स्वागत, एकजुटता के मूल्य जो शैक्षणिक सघन में पूरी तरह फिट होती हैं। ख्रिस्तियता, उन्होंने कहा, हर संस्कृति के सबसे अच्छे हिस्से से मेल खाती है और उसे परिशुद्ध करती जो सच्चा मानव नहीं है। संत पापा फ्रांसिस ने लातिनी अमेरिकी व्यापार परिषद के सदस्यों से मुलाकात की और उद्यमियों को अपने व्यापारिक प्रयास में आशा और दिशा खोजने हेतु सुसमाचार की ओर देखने का आग्रह किया। संत पापा ने कहा, कार्य को मिलन संस्कृति पर आधारित होना चाहिए। जो लोगों को सामान्य भलाई की तलाश करने में प्रोत्साहित करता है। अपने इस कथन के द्वारा संत पापा ने गुरुवार को पूरे लातिनी अमेरिका के व्यापारी नर और नारियों को उनके पेशे की बेहतरीकरण हेतु सुझाव दिए। अपने संबोधन में संत पापा ने उद्यमियों को सुसमाचार के अनुरूप निर्देशित कार्य तंत्र को अपने में लागू करते हुए आशा में बने रहने का आह्वान किया। उन्होंने कहा, एक व्यापार मॉडल जो मिलन के संस्कृति को आत्मसात करती है, कार्यस्थल में रेंगने वाले किसी भी छाया को दूर कर सकती है, जिसमें लाभ के लिए अत्यधिक चाह भी शामिल है, जो श्रमिकों को गुलाम बनाता है। मिलन की संस्कृति सार्वजनिक भलाई की चाह रखती है और इस प्रकार बुराई को दूर करने में योगदान देती है। संत पापा ने कहा कि एक संस्कृति का मूल्य जो दूसरों का सम्मान करती है, अनगिनत दैनिक बलिदानों और दूसरों को बढ़ने में मदद करने के प्रयासों में परिभाषित होती है। संत पापा ने व्यापार में संलग्न नर और नारियों को यीशु के शिष्यों की ओर देखने का आह्वान किया, जो अपने में मछुआरे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने अपने समय के तूफान में नाव को आगे ले चलना सीखा। आधुनिक उद्यमियों के रूप में हम उनसे बहुत बातों को सीख सकते हैं। आपकी सेवा अमूर्त नहीं बल्कि सीधे लोगों से जुड़ी है, जो हमारे एक साथ कार्य करने को जरूरी बनाता है, जहां हम किसी के ऊपर नहीं चलते या किसी को पीछे नहीं छोड़ते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार को ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला डी सिल्वा से दूरभाष में वार्ता करते हुए युद्धग्रस्त यूक्रेन में शांति स्थापना पर चर्चा की। वाटिकन प्रेस कार्यालय ने इस वार्ता की पुष्टि की, जिससे पहले ही ब्राजीलियन सरकार की आधिकारिक वेबसाइट में प्रकाशित कर दिया गया था। राष्ट्रपति लूला ने संत पापा के प्रति अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट किए, जिन्होंने अपनी ओर से यूक्रेन में शांति व्यवस्था की हर संभव पहल की है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने हाल ही में यूक्रेन रूस के युद्ध में शांति निष्कर्ष पर मध्यस्थता करने के लिए ब्राजील सहित राष्ट्रों के एक समूह के लिए अपने प्रस्ताव की पुनः पुष्टि की है। ब्राजील सरकार अनुसार राष्ट्रपति लूला ने यूक्रेन में हो रहे युद्ध पर अपने दुख व्यक्त करते हुए संत पापा के संग अपनी वार्ता का संक्षिप्त विवरण दिया और कहा, उन्होंने यूक्रेन में शांति व्यवस्था हेतु अन्य देशों के नेताओं से भी वार्ता की है। उधर संत पापा फ्रांसिस ने दुबई में होने वाले आगामी COP28 सम्मेलन में विश्वासी समुदायों के महत्वपूर्ण योगदान पर चर्चा करने हेतु वैश्विक मुस्लिम सम्मेलन के वरिष्ठ अधिकारियों के महासचिव और UAE अध्यक्षाधीन मंडल के विशेष प्रतिनिधि से मुलाकात की। इस मुलाकात में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 में विश्वास आधारित समूहों की तैयारी और भागीदारी पर चर्चा की गई, जिसका आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक दुबई UAE में किया जाएगा, जिसकी विषय वस्तु वैश्विक खाद्य प्रणाली की सुरक्षा रखी गई है। वहीं संत पापा फ्रांसिस ने रोडाइन गढ़ शांति परियोजना के एक युवा दल से बुधवार को वैटिकन के संत पेत्रुस प्रांगण में भेंट की। संत पापा ने शांति दल से भेंट करते हुए कहा, आपने इस बात का निर्णय लिया है कि आप शत्रुओं की तरह नहीं बल्कि भाई बहनों की तरह जीवन यापन करेंगे। आपका यह उदाहरण राजनीति हेतु उत्तरदायी लोगों को शांति स्थापना हेतु प्रेरित करे। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।